स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 14 नवंबर और दिन सोमवार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गैर कानूनी तौर पर रह रहे करीब 30 लाख प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा या जेल।
What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers.
500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से बढ़ती जा रही है लोगों की परेशानियां।
पिछले 4-5 दिन का जो अनुभव है वो ये बताता है कि सरकार ने ठीक से होमवर्क या तो किया नहीं है या हमें अगले 2-4 दिन में कोई चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल जाए तो अलग बात है।
माओवादियों पर भी होगा क्या इसका असर, करेंगे जानने की कोशिश, और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पद संभालने के बाद अवैध तरीके से रहने वाले 20 से 30 लाख प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा। CBS न्यूज को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि इस कार्रवाई में आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों, गैंग सदस्यों और ड्रग डीलरों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमाएं सुरक्षित होने के बाद अवैध तरीके से रहने वाले बाकी 80 लाख लोगों के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैक्सिको से लगती सीमा पर दीवार के साथ बाड़ भी लगाई जा सकती है। चुनाव के दौरान ट्रंप ने सीमा पर दीवार बनाने का वादा किया था। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के नतीजों पर चर्चा के लिए ब्रसेल्स में बैठक की। यूरोपीय संघ के कई नेता चुनाव के दौरान दिए गए ट्रंप के बयानों को लेकर चिंतित हैं। रूस को लेकर नरम रुख, नेटो और यूरोपीय संघ को लेकर उनके बयानों को लेकर खास तौर पर चिंता जाहिर की जा रही है। इस बैठक में ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बोयको बोरिसोफ ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सोशलिस्ट उम्मीदवार रुमेन राडेव की जीत के बाद किया। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक उन्होंने दूसरे दौर की वोटिंग में जीत दर्ज कर ली है और 20% की बढ़त बनाए हुए हैं। राडेव रूस के साथ बेहतर संबंधों के हिमायती हैं। प्रधानमंत्री बोरिसोफ ने कहा, सबसे पहले हम चुनाव के विजेता श्रीमान राडेव और श्रीमती इटोवा को बधाई देना चाहेंगे। मैं हमें समर्थन देने वाले हर व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। संसद के पहले दिन, ये कल या फिर मंगलवार को हो सकता है, मैं इस्तीफा सौंप दूंगा। अगर वो चाहे तो अपने मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। ये थे बोयको बोरिसोफ के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। न्यूजीलैंड में मध्यरात्रि के बाद शक्तिशाली भूकंप के झटकों के असर से कम 2 लोगों की मौत हो गई। भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। भूकंप के बाद सुनामी लहरें भी उठीं। भूकंप का केंद्र क्राइस्टचर्च से उत्तर की ओर था। प्रधानमंत्री जॉन की के मुताबिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं और ताज़ा स्थिति की जानकारी ली जा रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो ने आर्थिक आपातकाल की अवधि बढ़ा दी है। इससे उन्हें संसद के नियंत्रण के बिना राज्य के खर्च को तय करने का अधिकार मिल गया है। 60 दिन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद आर्थिक आपातकाल की स्थिति को 1 साल पूरा हो जाएगा। BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका BBC हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 14 तारीख और दिन सोमवार। इस वक्त हो चुके हैं 6:33:42। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पद संभालने के बाद अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 20 से 30 लाख प्रवासियों को या तो निर्वासित कर दिया जाएगा या फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनके निशाने पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग होंगे। उन्होंने मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने वाले अपने चुनावी वादे पर अमल करने को लेकर भी साफ साफ कहा। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए वात्सल राय से।
अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चैनल CBS को दिए साक्षात्कार में भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की है। ट्रंप ने बीते मंगलवार को डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन पर जीत दर्ज की थी। राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले अप्रवासियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। CBS की लेस्ली स्टाल ने ट्रंप से पूछा,
Are you really gonna build a wall?
Yes.
They're talking about a fence in the Republican Congress. Would you accept a fence?
इस सवाल पर कि क्या आप सचमुच में दीवार बनाने जा रहे हैं, ट्रंप ने कहा हाँ। अगला सवाल था, रिपब्लिकन कांग्रेस बाढ़ की बात कर रहे हैं, क्या आप बाढ़ लगाने की बात मंजूर करेंगे? इस पर ट्रंप ने कहा, कुछ इलाकों में मैं इसे मंजूर करूंगा, लेकिन कुछ इलाकों में दीवार ज्यादा उपयोगी होगी, निर्माण में मैं बहुत अच्छा हूं। अगला सवाल था, तो कुछ हिस्से में दीवार और कुछ हिस्से में बाढ़? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ कुछ हिस्से में बाढ़ लगाई जा सकती है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान मेक्सिको से लगती सीमा पर दीवार बनाने का वादा किया था। उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वो अप्रवासन कानून को सख्ती से लागू करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें निर्वासित किया जाएगा। अमेरिका में करीब 1,10,00,000 प्रवासी ऐसे हैं जो बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, इनमें से मेक्सिको से आए लोगों की बड़ी संख्या है। CBS ने ट्रंप से इस बारे में भी सवाल किया,
What about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants?
What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members.
इस सवाल पर कि बिना दस्तावेज के रहने वाले लाखों प्रवासियों को निर्वासित करने के वादे का क्या होगा, ट्रंप ने कहा, हम अपराधियों, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों, गैंग के सदस्यों, ड्रग डीलरों, ऐसे तमाम लोगों जिनकी संख्या 20 से 30 लाख हो सकती है को देश से बाहर निकालेंगे या फिर उन्हें जेल में डालेंगे। हम उन्हें देश से बाहर करेंगे, वो यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं। सीमाएं सुरक्षित होने के बाद और जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तब हम उन लोगों के बारे में विचार करेंगे जिनके बारे में आप बात कर रही हैं। ये बहुत अहम है, हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में अगले साल 20 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के चेयरमैन राइंस प्रीबस को अपना चीफ ऑफ स्टाफ चुना है। प्रीबस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमरीकी कांग्रेस के निचले सदन के स्पीकर पॉल रेयान के करीबी माने जाते हैं।
तो 30,00,000 करीब प्रवासियों को निर्वासित किया जा सकता है, बता रहे थे वात्सल राय। और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान ये भी कह रहे थे कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते को भी अमेरिका नहीं स्वीकार करेगा अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए जाते हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम के अगले हिस्से में।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,875, 7,430, 9,560, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब बात करते हैं भारत की। 1,000 और 500 के नोट को बंद करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद तकरीबन 5 दिन गुजर गए हैं। आज छठा दिन है, 8 तारीख की शाम 8 बजे उन्होंने ये घोषणा की थी। सरकार की ओर से इसे काले धन के खिलाफ जिस मकसद के लिए उठाया गया कदम बताया गया है उसके ठीक ठाक परिणामों को परखने में तो जाहिर है अभी वक्त लगेगा, लेकिन अभी इससे नकदी के अभाव और अब रद्दी हो गई नकदी को बैंकों में जमा करने के लिए पूरे देश भर में तफरी मची हुई है और असंतोष भी देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच कई जगहों से भारी तादाद में नोटों को जलाने, फाड़ने और बहा दिए जाने की भी खबरें आ रही हैं। सुनिए रोहित जोशी की रिपोर्ट।
8 नवंबर को शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम अपने एक औचक संबोधन में 500 और 1,000 के नोटों को उसी रात से बंद कर देने की घोषणा की, तब से बैंकों और ATMs में लंबी कतारें हैं और नकदी का अभाव रोजमर्रा के बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कई लोग सरकार के इस कदम को काले धन के खिलाफ एक साहसी कदम की तरह देख रहे हैं। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अजित रानाडे भी यही मानते हैं कि यह फैसला साहसिक है और ऐतिहासिक भी।
पूरे 85% 85% जो करेंसी है उसको रद्द ओवरनाइट किया जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा साहस बहुत ही ऐतिहासिक भी है।
लेकिन वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ प्रमोद जोशी कहते हैं कि जितना बड़ा फैसला लिया गया है उसके लिए तैयारी वैसी नहीं दिख रही।
पिछले 4-5 दिन का जो अनुभव है वो ये बताता है कि सरकार ने ठीक से होमवर्क या तो किया नहीं है या हमें अगले 2-4 दिन में कोई चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल जाए तो अलग बात है।
मोदी सरकार ने इसे काले धन के खिलाफ अपना महत्वाकांक्षी कदम बताया है, लेकिन दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता प्रोफेसर राकेश रंजन की कुछ और राय है।
ये जो कैश है ये पूरे काला धन का सिर्फ 6% है, तो इस 6% जो काला धन है क्या उसको टैप करने के लिए इतनी बड़ी कीमत किस हद तक जायज लगता है? मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके भी असर अर्थव्यवस्था पे पड़ती है। जिस तरह का अभी जो ट्रांजैक्शन और लिक्विडिटी की कमी की वजह से जो सारे आर्थिक गतिविधियां रुकती नजर आ रही है उसकी भी तो कीमत है।
एक समय भाजपा के साथ जुड़े रहे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मोहन गुरुस्वामी कहते हैं कि फैसले में कुछ जल्दबाजी दिखाई देती है।
अगर ये नोट बदलना था तो आप कहते थे कि भाई January 1st से नए नोट लागू हो जाएंगे, जब तक आप अपने पुराने नोट बदल दीजिए। वो करने के बाद जो दिखा कि 11 तारीख से नहीं चलेगा, फिर 14 तारीख से नहीं चलेगा, अब पूरी मार्केट में क्योस है, क्योंकि छोटे नोट नहीं है। जब तक आप छोटे नोट लाके मार्केट में रखते थे और कुछ ना कुछ परिवर्तन होता था।
लेकिन अजीत राणा ने कहते हैं कि इतने बड़े फैसलों में कुछ त्रुटियां रह ही जाती हैं, पर उससे निपटने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। प्रोफेसर राकेश रंजन की राय है कि यह फैसला गरीब तबके को भारी नुकसान पहुंचाएगा।
हमारे देश में जो छोटे व्यवसायी हैं या छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं जिनका कैश ट्रांजैक्शन होता है, हो सकता है कि इतने लंबे समय के डिसरप्शन में मार्केट का एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक मनी है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाए, तो वैसे में 2 महीने के बाद इनके लिए क्या रोजगार बचता है या उसके लिए कोई वैकल्पिक चीज है जो हम देख सकते हैं।
लेकिन अजीत राणा कहते हैं कि इस प्रक्रिया से बैंकों में जो धन आएगा उससे अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा।
बहुत सारा पैसा बैंकों में आ रहा है डिपॉजिट के द्वारा, तो जब बैंकों में डिपॉजिट ज्यादा बढ़ेंगे इसका मतलब है वो ज्यादा कर्जा दे पाएंगे और ब्याज भी कम होगा। ब्याज कम होने से शायद इन्फ्लेशन, जैसे जब कहते हैं कि जब चलन बढ़ती है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो चलन जब घटती है करेंसी का टोटल अमाउंट जब घटता है तो इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है, तो मीडियम टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन।
पत्रकार प्रमोद जोशी का मानना है कि मोदी सरकार का यह कदम आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी है।
आने वाले शायद जो 2-4 महीने बाद कई राज्यों के चुनावों की संभावना बन रही है तो उस पर उसका कोई फायदा हो, एक ये भी कारण हो सकता है। पर जो राजनीतिक के लाभ लेने की इच्छा है अगले 6 दिन या 8 दिन बल्कि 10-12 दिन मान लीजिए, जो असली लड़ाई इसी दौरान तय हो जाएगी कि इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पलट भी सकता है। ये मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रहे हैं या इसको ब्रह्मास्त्र जैसा मानकर चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पलटवार करने लगे।
सरकार की ओर से इस फैसले को काले धन के खिलाफ जिस मकसद के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है उसके ठीक ठीक परिणाम आने में अभी समय लगेगा, लेकिन इन परिणामों को लेकर लोगों के बीच असमंजस बरकरार है। रोहित जोशी, BBC दिल्ली।
तो सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार पर और काले धन पर कितना काबू पाया जा सकेगा, जाहिर है ये अभी बताना तो मुश्किल है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या माओवादियों पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा। कम से कम छत्तीसगढ़ पुलिस का तो यही दावा है कि सरकार के इस फैसले से माओवादियों की कमर टूटने वाली है। पुलिस के अनुसार माओवादी लेवी के रूप में कई 1,000 करोड़ रुपए वसूलते हैं और बड़े नोटों की शक्ल में वसूली गई ये रकम जंगलों में ही रखी जाती है, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ पुलिस का। वसूली की इसी रकम से माओवादी राशन से लेकर हथियार और गोला बारूद तक खरीदते हैं। 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों पर पाबंदी के कारण माओवादियों के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ पुलिस का। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के 27 में से 16 जिले माओवाद प्रभावित हैं और बस्तर के 7 जिलों में तो सरकार भी मानती है कि कई इलाकों में माओवादियों की समानांतर सरकार चलती है। माओवादियों की सरकार का राशन पानी, दवा दारू, गोला बारूद और तमाम तरह के खर्चों का इंतजाम लेवी के रूप में वसूले गए करोड़ों रुपए से होता है। माओवादी मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग का कहना है कि सरकार के 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद करने का असर माओवादियों पर गहरे तक पड़ेगा।
नोटबंदी का असर माओवादियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। राशन से लेकर हथियारों तक नगद से ही आता है। वे नोटों को या तो जंगलों में जमीन में गाड़ कर रखते हैं या पिट्ठुओं पर लाद कर चलते हैं। इनमें आमतौर पर 500 और 1000 के नोट ज्यादा होते हैं। माओवादियों के लिए ये एक बड़े संकट का कारण हो गया है।
केंद्र सरकार के अनुसार माओवादियों द्वारा वसूल की जाने वाली लेवी की यह रकम पूरे देश में 140 करोड़ रुपए है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है कि माओवादी अकेले बस्तर से 1500 करोड़ रुपए लेवी के रूप में वसूलते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी का कहना है कि माओवादियों को करोड़ों रुपए मिलते हैं।
नक्सलियों को जो उनका नेटवर्क चलाने के लिए बहुत सारा पैसा वो चंदा के रूप में लेते हैं, माइनिंग का या सड़क का या और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। उनके साथ काम करने की लेवी के रूप में वो कुछ पैसा लिया करते हैं, उसका मात्रा बहुत ज्यादा है।
बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कलूरी का दावा है कि माओवादियों ने कम से कम 7,500 करोड़ रुपए बस्तर के जंगलों में दबा कर रखे हैं, लेकिन विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी का कहना है कि रकम भले जितनी करोड़ भी हो, लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से माओवादियों को मुश्किल होगी।
500 और 1000 के नोटों के बंद होने से वो मुद्रा जो कि एक इकट्ठी की जाती है, इस साल इकट्ठी की गई होगी या पिछले सालों की जो उनकी होगी, उस पे एक बड़ा काला प्रहार हुआ है और मुझे लगता है कि इसका बड़ा दूरगामी परिणाम पड़ेगा और नक्सलियों को काफी नुकसान आर्थिक रूप से उठाना पड़ेगा।
लेकिन बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश महापात्र का कहना है कि माओवादी नए सिरे से वसूली करेंगे और फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेंगे। सुरेश महापात्र का कहना है कि जिन स्रोतों से माओवादियों को पैसे मिलते हैं उन पर रोक लगाया जाना जरूरी है।
बस्तर में नक्सलियों के आर्थिक स्रोत का जो दावा पुलिस ने किया है यह वास्तव में समस्या परे है। 7,500 करोड़ रुपए नक्सलियों के पास किन सोर्सेस से आए हैं इसका भी उल्लेख होना चाहिए। आखिर बजट प्रावधान से ज्यादा नक्सलियों की आय हो कैसे सकती है।
हालांकि माओवादी मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग को इस बात की आशंका है कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए माओवादी बैंकों और एटीएम को निशाना बना सकते हैं।
ये स्थिति एक तरफ सुरक्षा बलों के लिए अवसर है, दूसरी तरफ उनके लिए सतर्क रहने का कारण भी, क्योंकि माओवादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अपने इलाके के लोगों पर दबाव बढ़ाएंगे और बड़ी जरूरतों के लिए बैंकों या एटीएम्स को निशाना भी बना सकते हैं। उन्हें अपने इलाके के आम लोगों से छोटे नोट तो मिलते ही हैं, उन्हें बड़े नोटों की जरूरत होगी ही और बड़े नोट कैसे हासिल करें वे इसकी रणनीति पर काम करेंगे ही।
फिलहाल बस्तर के सभी 7 जिलों में पुलिस को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जनधन योजना समेत दूसरे बैंक खातों में जमा होने वाली रकम पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है। गांव और बस्ती से आने जाने वाली हर गाड़ियों में सघन जांच पड़ताल तो चल ही रही है। जाहिर है ऐसे में माओवादियों के लिए अपने आर्थिक रक्षा कवच को बचा पाना बहुत आसान नहीं होगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
तो माओवादियों पर भी सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले का हो सकता है असर। बहरहाल नोटों को गैर कानूनी करार देने का फैसला भारत में पहले भी हो चुका है और न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पहले ऐसे किया जा चुका है। तो पाकिस्तान में ये फैसला कब हुआ और क्या निकले उसके नतीजे, बता रहे हैं BBC उर्दू के हमारे साथी वसतुल्ला खां अपने इस साप्ताहिक ब्लॉग में।
जनरल याहिया खान जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तो एक दिन उनकी सरकार ने 100 और 500 रुपए के नोट कैंसिल कर दिए। शायद वो भी काला धन साफ करना चाहते थे। पर 1970 में आम मुलाजिम की पगार ही 300-350 हुआ करती थी, इसलिए कोई ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं लगी। उस ज़माने में 22 बड़े पूंजीपतियों का बहुत चर्चा हुआ करता था। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने तो 70 का चुनाव ही पाकिस्तान की जान इन 22 मोटे ख़ानदानों से छुड़ाने के वादे पे लड़ा। इनसे तो खैर क्या जान छूटती, एक वर्ष बाद पूर्वी पाकिस्तान से ही जान छूट गई। वो दिन और आज का दिन 22 ख़ानदानों की जगह उनसे भी ज़्यादा ताकतवर 150 ख़ानदानों ने ले ली। सन 70 में तो सबसे बड़ा नोट 500 का था, आज 5,000 का है। सुना है 10,000 का लाने पे भी गौर हो रहा है। पिछले 50 वर्ष में करेंसी नोटों के डिज़ाइन ज़रूर बदले पर नोट दोबारा कैंसिल नहीं हुए। कोई सोचे कि पूंजीवाद अगर बेवकूफ़ होता तो फिर अरबपति कैसे बनता। वो पूंजीवाद ही क्या जो किसी भी राष्ट्र की मशीनरी से दो हाथ आगे की ना सोचता हो। वैसे आज की डिजिटल दुनिया में कैश कौन रखता है, फिर हजारों ऑफशोर कंपनियां और बेनामी फॉरेन अकाउंट्स की क्या ज़रूरत है। जो भी बड़ा नोट बनाता है वो ये भी जानता है कि 1 करोड़ रुपए के 1000 के नोटों का वज़न कम से कम 12-13 किलो होता है और 1 अरब रुपए की करेंसी रखने के लिए एक दरमियाने साइज के कमरे जितनी जगह चाहिए। वो क्यों भला ये बोझ उठाए फिरेगा जब माउस के एक क्लिक पे उसका करोड़ों रुपया 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी अकाउंट में इधर से उधर हो सकता है। क्या असलहे पे कमीशन थैलों में भर के लिया जाता है? क्या ड्रग्स का पैसा किसी कंटेनर में भर के दिया जाता है? इन्वेस्टमेंट और टैक्स एक्सपर्ट्स, हवाले का काम करने वाले, प्रॉपर्टी डीलर्स, फ्रंट कंपनियां वगैरह वगैरह, ये सब क्या मेरे ताऊजी की सेवा के लिए हैं? करेंसी नोट तो काले धन का 5% भी नहीं है। असल काला धन तो काले जादू की तरह है, होता भी है मगर नज़र भी नहीं आता। यकीन ना आए तो करेंसी नोट बदलवाने वाली लाइनों में खड़े चेहरे ही देख लें, क्या काला धन रखने वाले चेहरे इतने ही परेशान होते हैं? आप जिन जिन दिग्गज पूंजीवादियों के नाम जानते हैं, क्या उन्हें कभी किसी बैंक में किसी ने आते जाते देखा? मैंने तो हमेशा बैंकर को ही काले धन से बने महलों के चक्कर लगाते देखा है। काला धन भले ख़त्म हो ना हो, मगर सरकारों को नोट कैंसिल करने जैसे काम हर चंद वर्ष बाद ज़रूर करते रहने चाहिए। इससे और कुछ हो ना हो, पर राजनीति के वोट बैंक में क्रेडिट लाइन ज़रूर बनी रहती है और कहने को भी रहता है कि हमने काले धन के शिकार के लिए जितना किया इतना पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। और लोगों का क्या है, नोट बदलवाने की नहीं तो किसी और लाइन में खड़े होकर मिन मिन करते रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कह रहे थे पाकिस्तान से वसतुल्ला खां।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं मेरे साथी वात्सल राय। वात्सल, क्या कह रहे हैं आपके अखबार?
जी, अखबार में जिस तरह से वसुत साहब ने लाइन की बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से लाइन लगने वाली है, क्योंकि वहाँ व्यापार मेला, 36वां व्यापार मेला शुरू हो रहा है। ये नोटों की लाइन से अलग है, ये बात अलग है कि नोट और वोट की बहस के बीच में व्यापार मेले की इस बार ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है।
नहीं होगी।
फिर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। नई दुनिया अखबार ने इसको अपने पहले पन्ने पर जगह दी है, लीड खबर की जगह ये तस्वीर लगाई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है, जिसमें तमाम लोग, अखबार का दावा है कि हज़ारों लोग हैं जो एक बैंक के बाहर नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और लगभग वहाँ से, वाराणसी से 1000 किलोमीटर दूर की एक तस्वीर छापी है हिंदुस्तान अखबार में, जिसे आप देख सकते हैं फरीदाबाद में, जहाँ एक पुलिसकर्मी हाथ में डंडा उठाए हुए है और जो लोग एटीएम के बाहर लाइन लगाए हुए हैं नोट पाने के लिए, उनके ऊपर वो डंडे चला रहे हैं। ये खबर जो नोट बदलने की है और उससे जुड़ी हुई दिक्कतों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा में और कर्नाटक में जो बयान दिए हैं, सारे अखबारों ने इसको पहले पन्ने पर प्रमुख खबर की तरह, पहली खबर की तरह छापा है। ये जानकारी भी दी गई है कि जिस तरह से अभी तक एक सीमा लगाई हुई थी एटीएम से, हर दिन 2000 से ज़्यादा रुपये नहीं निकाले जा सकते थे, इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब एटीएम से आज से 2500 रुपये रोज़ निकाले जा सकते हैं, और खाते से एक हफ्ते में जो 20,000 रुपये निकालने की सीमा थी वो 24 हो गई है। अमर उजाला, दैनिक भास्कर और बाकी अखबारों ने इसको पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पहली खबर का हेडिंग दिया है, जो प्रधानमंत्री का एक बयान है, 50 दिन तक दर्द बर्दाश्त करो फिर मुझे दंड देना। ये गोवा की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था। इसी रैली में मोदी ने जो संकेत दिया था कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई वो कर सकते हैं, इसे भी अखबार ने प्रमुखता से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की पहली खबर की सुर्खी कहती है कि मोदी ने भारत को बदलने के लिए 50 दिन मांगे हैं। यानी पहले जो बात हो रही थी 2 दिन की
या दो हफ्ते की, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ दिन कबल ये कहा कि 2-3 हफ्ते लगेंगे, परेशानी लोगों को सिर्फ 2-3 हफ्ते के बाद ठीक हो जाएंगे हालात।
जी, विपक्ष ने इस मुद्दे को लपका है और ये सवाल तमाम नेताओं ने उठाए हैं, और सर्वदलीय बैठक सोमवार को
यानी आज
जी कई दल कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। और हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई विपक्षी नेताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं, उसके पहले विपक्ष को एकजुट करने की बात की जा रही है। जनसत्ता ने इसी पर एक कार्टून दिया है जिसमें माल्या जैसी, विजय माल्या जैसी एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो बता रहे हैं कि पीएम इज़ राइट, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए हैं और कंधे पर उनकी एक गठरी लटकी हुई है
और वो गठरी नोटों से भरी होगी।
जी
जी।
दूसरी खबरों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का एक बयान जारी हुआ है जो उन्होंने जारी किया है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। अस्पताल में हैं वो 50 दिन से ज़्यादा वक्त तक, उन्होंने कहा ये मेरे लिए पुनर्जन्म है। हिंदू ने इसको पहले पन्ने पर जगह दी है।
बहुत शुक्रिया वात्सल आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेला गया पहला टेस्ट मैच कल कुछ उतार चढ़ाव दिखाने के बाद ड्रॉ रहा। इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 310 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए भारत ने 6 विकेट खोकर 172 रन बनाए। तो भारत ये मैच जीत तो नहीं सका, लेकिन भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर आई अदिति अशोक के जरिए। भारत की अदिति अशोक ने 18 वर्ष की उम्र में ही कल गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव जिसका नाम पहले था, में संपन्न महिला हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। यूरोपियन टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला गोल्फर हैं। उनकी कामयाबी को लेकर हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त ने वरिष्ठ खेल पत्रकार और गोल्फ विशेषज्ञ वी कृष्णा स्वामी से बात की।
जहां तक पेशेवर गोल्फ का सवाल है, महिलाओं के लिए ये काफी एक जो है नया खेल सा है, क्योंकि सिर्फ 10 वर्ष पहले ही जो है सबसे पहली महिलाओं की पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता हुई थी, दिल्ली में ही हुई थी। और 10 साल के अंदर ही जो है भारत ने सबसे पहले यूरोपीय जो है टाइटल जो है जीतने में सफलता पाई, और ये सफलता हासिल की 18 वर्षीय बेंगलोर की गोल्फर अदिति अशोक ने। क्योंकि भारत में जो है गोल्फ अभी भी जो है उतना पॉपुलर और इतने रुचि से नहीं खेला जाता जैसे कि यूरोप या अमेरिका में खेला जाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो अदिति अशोक ने किया है, ये जो नया कीर्तिमान अदिति अशोक ने प्राप्त किया है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इस टूर्नामेंट में अमेरिका की ब्रिटनी और स्पेन की बेलेनो मोजो भी थी, उनके खेल के बारे में क्या कहेंगे?
क्योंकि ये यूरोपीय स्तर पे ये टूर्नामेंट हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रतियोगिता में करीब लगभग 114 गोल्फर्स ने भाग लिया, और उनमें बहुत सारे ऐसे गोल्फर्स थे जो कि काफी नामी गोल्फर्स थे। उनमें ब्रिटनी लिंडसी कॉम जो है विश्व में जो है करीब 38वें पायदान पर है, और उन्होंने 2 मेजर भी जो है जीतने में सफलता हासिल की, वो भी भाग ले रही थी। और उनके अलावा बेलेन मोजो, बेथ एलन जो यूरोपीय टूर के ऑर्डर ऑफ मेरिट में अभी भी जो है पहले स्थान पर है, उनके अलावा 7 और अन्य ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इसी वर्ष में जो है यूरोपियन टूर पे कम से कम एक प्रतियोगिता जरूर जीती थी। और उसके अलावा 10 और ऐसे गोल्फर्स थे जिन्होंने पिछले 2 या 3 वर्ष में जो है एक या दो जो है खिताब हासिल किए थे। तो उनके सामने जब 18 वर्षीय अदिति अशोक को रखा जाए तो ये जो है बिल्कुल ही कहके जो है अनुभवहीन थी। ये उनका पहला साल है जब वो पेशेवर प्रोफेशनल गोल्फ में भाग ले रही हैं, और ये सिर्फ उनका 11वां टूर्नामेंट था। और इस साल जो है उन्होंने 4 अन्य टूर्नामेंट्स में जो है टॉप 10 में भी पोजीशंस हासिल की थी, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो उन्होंने जीत हासिल की उससे अब ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय महिलाएं जो है आगे के आने वाले वर्षों में भी जो है पेशेवर गोल्फ में अपना नाम बना सकते हैं।
बात कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी से। और चलते चलते सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पद संभालने के बाद अवैध तरीके से रहने वाले 20 से 30 लाख प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के नतीजों पर चर्चा के लिए ब्रसेल्स में बैठक की। यूरोपीय संघ के कई नेता चुनाव के दौरान दिए गए ट्रंप के बयानों को लेकर चिंतित हैं। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बोयको बोरिसोफ ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सोशलिस्ट उम्मीदवार रुमेन राडेफ की जीत के रुझान सामने आने के बाद किया। न्यूजीलैंड में मध्यरात्रि के बाद शक्तिशाली भूकंप के झटकों के असर से कम 2 लोगों की मौत हो गई। भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।